अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है मानवता का देवता। जब से उसने होश संभाला अपने को मैला ढोते ही पाया था। घर घर जाकर मैला ढोना और उसके एवज में चंद रोटियां मिलना उसका दैनिक कार्य था। वो दयालु तथा सहिष्णु था। दूसरों की सहायता करने में उसे अपार सुख तथा शांति मिलती थी। उसके पास दिल था पर दौलत नहीं। चाह कर भी वो किसी की सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वो अछूत था। क्या भूखे से भूखा आदमी भी उसकी दी हुई रोटी अंगीकार करता? शायद नहीं। उसकी छाया से भी लोग दूर भागते थे। सुबह जब वो गली में झाड़ू लगाता तो लोग उससे इतनी दूर होकर चलते जैसे वो कोई विषैला सर्प हो और पास आते ही उन्हें डस लेगा। जब भी गंगा स्नान को कोई पंडित या उच्च कुल का आदमी जाता तो दूर से ही उसे दुत्कार कर कहता, दूर हो जा, देखता नहीं है हम स्नान करने जा रहे हैं। उसकी आंखें भर आती। वो करुण दृष्टि से उन्हें निहारता, अपनी झाड़ू लेकर एक कोने में अपराधी के समान सिर झुका कर खड़ा हो जाता। उसे रुक रुक कर झाड़ू देने में काफी देर हो जाती। फिर घरों का मैला साफ करके उसके एवज में हर घर से वो रोटियां लेकर अपने घर लौटता था, जहां उसके दो भाई बहन बड़ी उत्सुकता से उसकी बाट जोहते थे। वो रोटी देखते ही खाने को बेचैन हो जाते थे। प्याज तथा नमक के संग रोटी खाकर वे तृप्त हो जाते। उन्हें बिना साग के रोटी खाते देख उसकी आत्मा कचोटने लगती। जिस दिन कोई दयालु स्त्री सालन या कबाब के कुछ टुकड़े दे देती, उस दिन बच्चों का मुख खिल उठता, जैसे उन्हें कोई नियामत मिल गई हो। वे चटकारे ले लेकर खाते थे। पढ़ने का उसे बहुत शौक था, पर क्लास में क्या वो कदम रख सकता था? शायद ऐसा एकदम असंभव था। काम को जल्द से जल्द निपटा कर वो मदरसे के किसी कोने में छिपकर घंटों खड़ा होकर अक्षर ज्ञान प्राप्त किया करता था। वो मेधावी था। कुछ पैसे जोड़कर वो किताब भी खरीद लाया था, जिसे वो देर तक गली की रोशनी में पढ़ता रहता था। उसने धीरे धीरे इतनी योग्यता प्राप्त कर ली थी कि मामूली पत्र लिख सके। जब वो स्कूल जाते बच्चों को बस्ता लटकाए देखता तो उन्हें हसरत से निहारता रह जाता। स्वप्नों की दुनिया में खोया, कल्पना के पंख लगाकर कभी कभी उसके सामने अपना ही चित्र, जिसमें वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने और बस्ता लटकाए स्कूल के बच्चों के संग जाता नजर आता। थोड़ी देर के लिए वो स्वर्णिम लोक में पहुंच जाता था। जब वो वास्तविक जगत में आता तो उसकी आंखें नम हो जाती। जिस बस्ती में वो काम करता था वहीं एक नवाब की आलीशान हवेली थी। कहते थे वो नवाब वाजिद अली शाह के वंशज थे। किसी समय उस हवेली की शान शौकत की धूम थी। नौकरों का जमघट लगा रहता था। नवाब नसीरुद्दीन शाह खुले हाथों दौलत लुटाते थे। शराब वेश्या तथा चाटुकारों का बोलबाला था। किसी को भी इनाम देना होता तो अशर्फियों की थैली फेंक देते थे। चाटुकार अपना उल्लू सीधा करते रहते थे। अय्याशी के कारण धीरे धीरे वो खोखले होते जा रहे थे। उनके पास कोई कारों का खजाना तो था नहीं कि ख़त्म ना होता। और एक दिन ऐसा आया कि घर का कीमती सामान भी चुपचाप बिकने लगा। शराब तथा वैश्यागमन के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि तीन छोटे छोटे बच्चे छोड़कर वे स्वर्ग सिधार गए। बेगम के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अपने वंश की मर्यादा तथा झूठी शान शौकत दिखाने के कारण नवाब साहब पहले ही सब फूंक चुके थे, पर उनकी बेगम घर की मान मर्यादा को अब तक बचाए जा रही थी। उनकी नवाबी शान पर बट्टा न लगे, इसका ध्यान उन्हें हमेशा रहता था। बाहर के लोगों के सामने अब भी पान इलायची पेश की जाती थी और समय समय पर नौकरों को भी इनाम बांटा जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब बहाने से नौकरों को भी हटाना पड़ा। घर की एक एक चीज बिकती जा रही थी, पर बेगम तथा नवाब साहब की बहन नवाबी शान पर आँच न आए और दुनिया के सामने उन्हें नीचा न देखना पड़े, इसी कारण बच्चों को आधा पेट खिलाकर उस मैला साफ करने वाले लड़के को नियमित रूप से रोटी देती थी। अब मैला साफ करने वाला वो लड़का जवान हो चुका था। एक दिन नियत समय से पहले ही वो आ गया था। अभी वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि दो बच्चों की करुण आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। बच्चे रो रो कर कह रहे थे, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है, आज मैला साफ करने वाले को रोटी मत दो, वैसे भी दो दिन से हमें रोटी का एक टुकड़ा ही नसीब हो रहा है, आज ये रोटी हमें बांट दो। उतर में एक स्त्री की दर्दीली आवाज़ सुनाई दी, बच्चों अगर मैं मैला साफ करने को वो रोटी नहीं दूंगी तो वो हमारी स्थिति से वाकिफ हो जाएगा और तुम्हारे अब्बा तथा ख़ानदान की नाक कट जाएगी, पूरे शहर में हमारी गरीबी का ढिंढोरा पिट जाएगा, खानदान पर एक बार दाग लग गया तो वो जीवन पर्यंत छूट नहीं पाएगा। बचपन से मैला साफ करने वाले का उस हवेली से तथा उसमें रहने वालों के प्रति गहरा लगाव हो गया था। उन अनदेखे बच्चों तथा उस स्त्री की करुण कथा सुनकर उसका दिल भर आया, वो उल्टे पांव लौट आया। घर आकर वो सोचने लगा कि किस प्रकार वो उस स्त्री तथा बच्चों की मदद कर सकता है। उसने सोचा वो जवान है, ताकतवर है और थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, कोशिश करने पर शायद उसे कोई काम मिल जाए। काम मिलने पर वो सोचेगा कि किस प्रकार हवेली में रहने वालों की सहायता करे। उसने अपने एक मित्र से ट्रक चलाना सीखा, फिर वही मित्र उसे एक दूसरे नवाब के यहाँ जिनका व्यवसाय ट्रक से बाहर सामान भेजने का था ले गया। अपने नम्र स्वभाव के कारण उसे नौकरी मिल गई। उसकी कड़ी मेहनत तथा वफादारी से नवाब साहब उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसे एक अच्छी रकम मिलने लगी। सुबह वो नियमित रूप से सफाई का काम करता, फिर साफ सुथरा होकर रात भर ट्रक चलाता। महीने भर बाद उसे जब पहली तनख्वाह मिली तो उसके सामने ये समस्या आई कि वो इन रुपयों को हवेली तक कैसे पहुँचाए। जाहिर तौर पर तो उसके रुपयों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वैसे भी उस स्त्री के स्वाभिमान को चोट पहुँचाना नहीं चाहता था। यकायक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना वो एक अजनबी बेटा बनकर हर महीने दरवाजे की झिर्री से एक लिफाफे में रुपए अंदर डाल दे। उस लिफाफे में एक पत्र भी लिख दे जिसमें लिखा होगा, प्यारी अम्मा अपने अनदेखे बेटे का सलाम कबूल करो, अम्मी आप मुझे नहीं जानती पर नवाब साहब ने मुझे अपने बच्चे के समान प्यार दिया था, उस लिहाज से मैं भी आपका बेटा हुआ। आपका बेटा बच्चा कमा रहा है, आज वही बेटा अपनी कमाई से माँ को कुछ देना चाहता है। कहते हैं अपनी कमाई का कुछ भाग बड़ों पर खर्च करने से बरकत होती है, आपका बेटा यही चाहता है कि उसकी माँ उसकी कमाई का कुछ हिस्सा कबूल करेंगी, तभी वह उन्नति के शिखर पर पहुँच जाएगा। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मुझे अपना बेटा समझ कर ये छोटी सी रकम कबूल करेंगी तो आपके इस बेटे को अपार खुशी होगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं इस शहर में हूँ तभी तक ये रुपया आपको हर महीने भेजता रहूँगा, फिर क्या पता मैं कहाँ रहूँगा। मेरा छोटा भाई भी कमाने योग्य होता जा रहा है, जिस दिन वो अपनी कमाई आपके हाथों में रखेगा तब शायद मैं यहाँ से निश्चिंत होकर जा पाऊँगा। आपको अपने इस अनदेखे बेटे की कसम, उसकी कमाई को लौटाइएगा मत। खुदा हाफिज़, आपका एक अनदेखा बेटा। एक लिफाफे में उसने ये पत्र तथा रुपये रख कर काफ़ी सवेरे चुपचाप दरवाजे की झिर्री से फेंक दिया। नियत समय पर वो सफाई करने हवेली पहुंच गया। आज हवेली का माहौल बड़ा खुशनुमा नजर आ रहा था, क्योंकि कड़ा पर्दा था फिर भी हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। एक दिन पहले ही गमगीन वातावरण में आज खुशी झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी परी ने अपने जादू की छड़ी उस हवेली पर फेर दी हो। बच्चों के कह कहे और स्त्रियों की खिलखिलाहट ने हवेली में जान फूंक दी थी। ऐसा माहौल देखकर उस जवान लड़के की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया कि उसका रुपया सहर्ष कबूल कर लिया गया था। बचपन से मैला साफ करने वाले उस जवान लड़के का रोम रोम खुशी से खिल उठा। आज उसे लगा कि दूसरों की सहायता करके जो सुख मिलता है वो शायद हजारों कमाने पर भी नहीं मिलता। इस खुशी में जो शांति संतोष निहित था वो अनिवार्यनीय था। खुशी से भरे ऐसे माहौल को देखकर उस जवान लड़के का मन भी खिलखिलाने को कर रहा था, पर उसने हल्का मुस्कुरा के नीचे अपनी हंसी को दबा लिया। दिन रात कड़ी मेहनत करके भी वो जवान लड़का थकता नहीं था, क्योंकि उसके दिल में उत्साह हिलोरे लेता रहता था। एक आंतरिक शांति उसे कभी थकान महसूस नहीं करने देती थी। कड़ी मेहनत तथा लगन से उस लड़के ने अपने मालिक का मन मोह लिया था। वो जवान लड़का वर्षों तक हर महीने रुपए में लिफाफे रख कर भेजता रहा। एक दिन उसे पता चला कि हवेली वाली स्त्री के बेटे को नौकरी मिल गई है। उसने संतोष की सांस ली। उसे लगा आज वो स्त्री कितनी खुश होगी, काश वो इस खुशी में भाग ले सकता। उस स्त्री के गले में बाहें डालकर कह सकता, अम्मी आज अपने छोटे भाई की कामयाबी पर मुझे हद से ज़्यादा खुशी हो रही है। उसे लगा वो कोरी कल्पना ही तो है, एक सपना ही तो है जो आँख खुलते ही ख़त्म हो जाता है। उसे इस कल्पना को सपना ही समझकर भूलना पड़ेगा। भरी आँखों से उसने एक पत्र लिखा, मेरी अम्मी अपने अनदेखे बेटे का सलाम कबूल कीजिए। आज अंतिम बार यहाँ यह लिफाफा रखते मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, क्योंकि जो सुख मैं हर महीने इस दहलीज पर लिफाफा रख कर पाता था आज उससे वंचित हो रहा हूँ। पर एक सुख लेकर भी जा रहा हूँ, आज आपके बेटे की नौकरी लग गई है। आपका ये बेटा कितना खुश है ये लिख नहीं सकता। आपकी खिदमत करके जो सुख मैंने बटोरा था, आज अपने छोटे भाई को वो सुख बटोरते देखकर मुझे हार्दिक खुशी होगी। जीवन भर ये सुख मैं ही बटोरूं और अपने भाई को ये मौका ना दूं तो मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। अपने इस बेटे के लिए खुदा से दुआ मांगिएगा कि वो हमेशा सही रास्ते पर चल सके। मैंने माँ का सुख कभी नहीं पाया, पिता माँ से पहले ही गुजर चुके थे। आपको जिस दिन अम्मी संबोधित किया था उसी दिन से ऐसा लगा था कि आप सचमुच मेरी अम्मी हैं। आज से अम्मी कहकर किसे पत्र लिख पाऊंगा? एक अम्मी को खुदा ने छीन लिया और दूसरी अम्मी तुम्हें परिस्थितियों ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया। विश्वास मानो अम्मी, तुम्हारे नाम को लेकर मैं जिंदगी भर मधुर स्मृतियों में खोया रहूंगा। जिंदगी के मधुर क्षण वही होंगे जब मैं अम्मी शब्द का उच्चारण करूंगा। मैंने आपकी शक्ल तो कभी नहीं देखी, पर मेरी कल्पना में आपका सौम्य शांत चेहरा बस गया है। ये कल्पना शायद जीवन भर कल्पना ही बनी रहेगी, क्योंकि मैं सदा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उसने अश्रुपूरित नेत्रों तथा हसरत से एक बार उस ड्योढ़ी को निहारा जहाँ से वो हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रहा था। वो थोड़ी देर रुका कि शायद अंतिम बार अपनी अम्मी की आवाज़ सुन सके। थोड़ी देर बाद ही उसने सुना, वो स्त्री उस अनदेखे बेटे के लिए सिजदा करके खुदा से कह रही थी, या खुदा मेरे अनदेखे बेटे की राहों में फूल बिखेरना और उसकी राह के कांटे मुझे दे देना। उसने आस्तीन से अपनी बाह पोंछी और नवाबी हवेली की दहलीज को चूमकर शहर छोड़कर हमेशा के लिए चल दिया।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।